आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर आएंगे वाराणसी। 6,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की अहम बैठक। बसपा ने करहल सीट से अवनीश कुमार शाके को घोषित किया उम्मीदवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ मोहन राव भागवत आज पहुंचे मथुरा। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में लेंगे हिस्सा। और वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ समारोह के तहत कानपुर के चकेरी स्टेशन पर आयोजित हुआ एयर शो, सारंग एरोबेटिक टीम ने अपने प्रदर्शन से किया रोमांचित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर काशी समेत देश से जुड़ी 6,100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के रूट के संपर्क मार्ग बंद रहेंगे, साथ ही सर्विलांस ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
प्रधानमंत्री जी के कल आगमन को लेकर के पुलिस ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। एक तरफ यहां एसपीजी के जवान तैनात रहेंगे, उसके बाद हमारा पुलिस का घेरा रहेगा जिसमें लगभग 50 आईपीएस अफसर यहां पर लगाए जा रहे हैं और करीब 8,000 से 9,000 के आसपास पुलिसकर्मी इसमें तैनात रहेंगे। एटीएस के कमांडोज तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। ट्रैफिक की इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो रैली में लोग आ रहे हैं उनको 200 मीटर से ज्यादा न चलना पड़े। डायवर्जन भी इस प्रकार से ट्रैफिक के किए गए हैं कि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।
प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे में आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के दूसरे और तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दीपावली की सौगात देने के लिए 20 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे। अपने सांसद का ग्रैंड वेलकम करने के लिए काशी तैयार है। तीसरी बार वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी को पीएम मोदी विकास की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें वाराणसी की 380 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 2874 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, धर्म, पर्यटन से रोजगार, आवास, विमानन जैसी कई सुविधाओं का लोकार्पण करके जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण व नए टर्मिनल भवन की नींव भी रखेंगे। वह आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय को आमजन के लिए लोकार्पित करेंगे और शीघ्र स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20,000 से अधिक लोगों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की आगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। मिर्जापुर के 397 मझवा विधानसभा उप निर्वाचन के लिए आज 10 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। मझवा सीट के लिए अब तक कुल 22 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आज प्रदेश की करहल विधानसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बसपा ने इस सीट से अवनीश कुमार शाके को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर सपा तेज प्रताप यादव को पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इसके साथ ही सपा ने अब तक कुल 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं भाजपा ने अभी उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हुई बैठक में टीम 30 को उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतने का टारगेट दिया। बैठक में सभी 9 सीटों को जीतने के प्लान पर रणनीति तैयार की गई। बैठक में जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहां के प्रभारी मंत्रियों, जिला अध्यक्ष, संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक एक बूथ को मजबूत करने पर मंथन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री संगठन के साथ सामंजस्य बनाकर अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से कार्य करें। उपचुनाव को लेकर पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों को जल्द ही अंतिम रूप देने वाली है। वहीं पार्टी ने उपचुनाव में आरएलडी एक सीट दी है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने संशोधित मतदाता सूची उपलब्ध कराने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया है। समाचार कक्ष से आकाशवाणी समाचार के लिए शैलेंद्र शर्मा।
रामपुर की जिला अदालत में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान समेत 6 आरोपियों पर गवाह को धमकाने के मामले में आज आरोप तय किए गए। अब 24 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। वर्ष 2022 में शहर कोतवाली में आजम खान सहित 6 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 में धांधली की आशंका को लेकर लोक सेवा आयोग के उप सचिव अधिकारी ने दो लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। ये मामला भदोही के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी के निदेशक की सूचना पर दर्ज हुआ है। परीक्षा से संबंधित वॉइस क्लिप मिलने पर IICT के निदेशक ने मामले की शिकायत आयोग से की थी। इस ऑडियो क्लिप में अज्ञात व्यक्ति से बात कर परीक्षा को प्रभावित व अनुचित लाभ प्राप्त किए जाने का प्रयास सामने आया था। मामला दर्ज होने के बाद भदोही पुलिस जांच में जुट गई है। 20 अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा को आयोग ने स्थगित कर दिया है। उधर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कल एक बैठक में PCS परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मऊ में समाजवादी पार्टी के घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव राय पर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर से दुर्व्यवहार, सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये मुकदमा थाना सराय लखनसी में दर्ज हुआ है। तहरीर देने वाले डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि घोसी सांसद राजीव राय 10 से 15 लोगों के साथ उनके चैम्बर में आए और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले आज शाम मथुरा पहुंच गए। श्री भागवत संघ के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ होने पर परखम में आयोजित होने वाली संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में हिस्सा लेंगे। कार्यकारी मंडल की बैठक 25 और 26 अक्टूबर को होगी। बैठक में 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, संघचालक, सह संचालक, संघ कार्यवाह सहित 400 लोग होंगे शामिल। मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।
जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि सर संघचालक जी का जेटपर सिक्योरिटी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए वहां पर जहां उनका प्रवास हो रहा है, जहां उनके विभिन्न कार्यक्रम है, उसको देखते हुए सभी संबंधित विभाग, चाहे इरिगेशन विभाग हो, चाहे हेल्थ विभाग हो या पुलिस और प्रशासन हो, सबके साथ हम लोगों ने बैठ के कर लिया है और सबके दायित्व तो वहां पर बता दिए गए हैं, क्या क्या दायित्व है, उसके हिसाब से हम लोगों की तैयारियां कम्प्लीट हो चुकी है।
भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले एरोबेटिक टीम ने आज कानपुर वायुसेना स्टेशन चकेरी में वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान सारंग एरोबेटिक टीम के पायलटों के असाधारण कौशल और सटीकता भरे प्रदर्शन से लोग रोमांचित हो गए। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सारंग एरोबेटिक टीम की सदस्य पल्लवी ने इसके बारे में बताया।
जिसमें हमने अलग अलग फॉर्मेशन को दर्शाया, जिसमें हमने आत्मनिर्भरता को दर्शाते हुए इंडिया फॉर्मेशन बनाई, डायमंड फॉर्मेशन बनाई, एजिलिटी को दर्शाने के लिए क्रॉस ओवर ब्रेक, लेवल क्रॉस, लेवल मिस, और जो कानपुर की जनता का जोश इतना अच्छा था तो उसके लिए हमने उनके लिए स्पेशल हार्ट फॉर्मेशन बनाई।
प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए खुद इस तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करने के साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसे अभेद्य बनाने के लिए रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के चक्रव्यूह से सुरक्षित किया जा रहा है, जिसमें 37,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके साथ ही संपूर्ण मेला अवधि के दौरान 10 प्रकार के सुरक्षा ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप सी के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच हो रहे मैच में हरियाणा ने आज दूसरे दिन 9 विकेट के नुकसान पर 431 रन बना लिए हैं। हिमांशु राणा के बाद धीरू सिंह ने शतक पूरा करके 103 रन बनाए। उत्तर प्रदेश की ओर से विपराज निगम और शिवम वर शर्मा ने 3-3 विकेट लिए, 2 विकेट यश दयाल ने लिए और 1 विकेट सौरभ कुमार ने लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर आएंगे वाराणसी। 6,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की अहम बैठक। बसपा ने करहल सीट से अवनीश कुमार शाक्य को घोषित किया उम्मीदवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज पहुंचे मथुरा। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में लेंगे हिस्सा और वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ समारोह के तहत कानपुर के चकेरी स्टेशन पर आयोजित हुआ एयर शो सारंग एरोबेटिक टीम ने अपने प्रदर्शन से किया रोमांचित। आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।